कृष्णाहं करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले स्मृति गुरुपाद पद्म नित्य विदा पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शक्ति श्रीमान भक्ति वेदांत श्री रामन गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद परित्राजकाचार्य वर्ज त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य विदा पृष्ठम विष्णुपाद अष्टभक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासी वृंद गुरुगत सज्जनवृंद मातृवृंद हरिकथा पिपास शत्रुवृंद सभी के चरण कमल में मेरा यथाथ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। श्री गुरु महाराज कृपा करके मुझे आदेश दिए हैं कुछ हरिकथा कीर्तन करने के लिए। समस्त वेद पुराण उपनिषद में एक ही स्वर से वर्णन करते हैं ये साधु संघ के द्वारा ही हम लोग भगवत भक्ति और भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं साधु संघ सर्वशास्त्री कय लवमात्र साधु संघ सर्वसिद्धि कय लवमात्र साधु संघ लव शब्द के अर्थ है एक सेकंड की यदि ग्यारह भाग की जाए उसकी ग्यारह भाग की एक भाग ही जो है उसको लव कहा जाता है। इतना ये अत्यंत क्षणिक समय को ही साधु संघ करे उस साधु संघ के फल क्या है भगवत भक्ति प्रेम प्राप्त हो जाए। जबकि जीवों के एकमात्र उद्देश्य क्या है ये कैसे साधु संघ हो और साधु संघ में वह जीवन सुधार जाए। अतः अत्यंत खेम पृछा भगवतो अनुभव कनाडो की सत्संग सेवधी मृणाम नवजीवेंद्र संवाद में जब एकादश में वेद श्री पाद वर्णन कर रहे जब उनके गृह में लेवी महाराज के गृह में कोटि कोटि अंदर चटित पदार्थ आदि नव महात्मा जब पधारे तब अत्यंत दीनहीन होकर के लेवी महाराज यही बताया अतः अत्यंत खेम खेल शब्द का मंगल जीवो की मंगल क्या है चरम मंगल क्या है ये अत्यंत खेम पृछाम भगवत अनुधार हे विश्वा हे महात्मा हे ब्रह्मन इस संसार में भक्ति भ्रमण करते करते जब के संसार दशा जब क्षय हो जाते हैं तब तो वह जीव साधु संघ करता है। भवा को भर को भ्रमोत जदा भवे चन सतहर्चुत सत्समागम भवा को भर को भ्रमोत जदा जदा भवे इस संसार में भ्रमण करते करते जीव जब उनकी संसार की दशा क्षय होने वाली है अतः जीव पुनः इस संसार में नहीं आना होता है तो वह जीव साधु संघ प्राप्त करता है। जिन्हें भवा को भर को संसार की सुख और संसार सुख की भोग के उपरांत स्वर्ग आदि
कहा जाए ऐहिक सुख कहा जाता है और पार्थिक सुख अतः परलोकगत सुख अतः सरकारी सुख कहा जाता है। भगव वर्ग और इसके बाद में धर्म अर्थ इस संसार में लोग अर्थ कमाते रहते हैं जिस अर्थ के अर्थ के मूल हो जाता है वही उसके जीवों के जो है बंधन के कारण बन जाता है। धर्म अर्थ काम संसार में उनके अनेक प्रकार के काम बसना लगे रहते हैं इसे कहते हैं भगवान और धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे जब सुख नहीं मिलती है वो क्या करते हैं मुक्ति की कामना लेकर के जाते हैं। ये कैसे मुक्त मुक्ति में प्रवेश करे जिससे ब्रह्मवादी लोग मुक्ति काम लोग उपासना आदि करते हैं अंग ब्रह्मास्त्र आदि करके अपने को विनाश कर देते हैं। इसी प्रकार कहते हैं किंतु ये सत्संग करते करते जब उनके ज्ञान हो जाता है ये धर्म अर्थ और कर्मों के द्वारा मुक्ति के द्वारा उसके चरम कल्याण है। क्यों मुक्ति तक जीवों के सर्वदा सर्वानुबंधी नहीं है जीवों के सर्वानुबंधी क्या है भगवत प्रेम प्राप्ति जीवों की यह स्वरूप अनुबंधी है एकमात्र भगवत प्रेम जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य रास कृष्ण का सुंदरति भेदा भेद प्रकाश सभी हम लोग कृष्ण के नित्य दास है दास होने के नाते भगवत सेवा ही हम लोग के परम उद्देश्य है। भगवत सेवा छोड़कर के ये तो जो मुक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं वो आत्मघाती कहा गया सर आत्मघात वो आत्मघाती कहा जाते हैं वो अपने इस संसार में कोई बीज पान करके अथवा जहर पी लेते हैं और कुछ तरफ से आत्मघाती करते हैं कोई एक शरीर के शरीर को छोड़ते हैं किंतु मेरे आचार्य जो पाप करते हैं जो मुक्ति में प्रवेश कर जाते हैं प्रभु में लीन हो जाते हैं उसकी अंतता को विनाश कर देते हैं। ये जीवन के सर्वानुबंधी कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम से वो सदा के लिए वंचित हो जाते हैं इसलिए कहते हैं तार मध्य मुक्ति वांछा कोई तो प्रधान धर्म प्रचित कोई तो वस्त्र पर्व विमोचन सतर्क श्रीमद भागवत में स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं ये जितने प्रकार के कपटता है संसार में जितने प्रकार हम लोग कपटता विचार करते हैं सबसे कपटता क्या है जो मुक्ति के वांछा इच्छा करते हैं जो अद्वैतवादी लोग मुक्ति के लिए इतना प्रचार कर रहे हैं कोई बलत हम केवलम केवल मुक्ति के लिए हो जाते हैं किंतु उसके अर्थ बताया जाए जो पार प्रेम के लिए बताते हैं किंतु कोई बलम अतः केवल उसमें ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा जो एक कपटता है ये मुक्ति वांछा जब तक जिनके हृदय में रहेगा तब तक वो भक्ति रज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो ज्ञान जो कहा जाता है सिद्धांत से फिर सुपरनेचुरल नॉलेज जिसे कहा जाता है। गुरु वृंदावन की जो ज्ञान वही जगत की जगत के स्वरूप हुआ ये समस्त वर्णन करते जा रहे। शिक्षा इसी प्रकार है और प्राथमिक रूप वृंदावन की ज्ञान हम लोग कैसे प्राप्त करें, इस प्रकार ज्ञान जब जीवों के नहीं होता है वो इस संसार में बार बार भ्रमण करते हैं भवाप अपवर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष में वो घूमते रहते भवाप अपवर्ग भ्रमण जरा भवित जनस्वतम अच्युतम। ऐसे अच्युत भगवान गोविंद की नित्य परिकरों के जब संग प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार पंच ज्ञान के द्वारा को अपने चित्त की जब शोधन करते हैं अर्थात जब जान लेते हैं तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं कैसे भगवत प्रेम अर्थात अपराधी गुरु वृंदावन की प्रेम कैसे प्राप्ति करें उसके उपाय बता दिया है क्या आदु श्रद्धा तपो साधु संग तत्व भजन क्रिया मनुष्य नृत्य निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम यही प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं। आचार्य जी और इसी प्रकार बता रहे हैं कैसे हम लोग अपराधी गुरु वृंदावन की प्रेम को प्राप्ति करें। इसमें साधु संग जब तक नहीं हो तब तो जीव के कल्याण नहीं है न अपने के बारे में जान सकते हैं न दूसरे के बारे में कुछ जान सकते हैं। इसलिए छात्र ने हमारे पुस्तक रूप में वर्णन करते हैं ये भवाप वर्गो भ्रमोदय जन भवाप वर्गो जब ये भवाप वर्गो भ्रमोदय जना भवित जनस्तत पहुंचुक सत्समागम ये सत्समागम संत महाप्रे साधु की चांदनादी हो जाए उससे वो इस संसार से पार होकर चले जाए। छोटी कथाएं करके छोटी सी कहानी करके मैं अपने वक्तव्य के जो है परिपुष्ट करना चाहता हूँ और अपने वक्तव्य विराम देता हूँ। एक समय की बात है एक सुंदर भ्रमण और भ्रमण भ्रमण करते करते और उड़ करके जा रहे जहाँ गोबर के ढेर पड़ा हुआ था अत्यंत जो है दुर्गंध गोबर के ढेर पड़ा हुआ था और वहीं पर भ्रमण करते जा रहे भोर के ऐसे सुंदर झली सुन करके और उस गोबर के किला बाहर निकल करके आ गए बस तुम कौन हो कहाँ आ गया कहाँ से आए तुम देखने तो बहुत सुंदर है तुम्हारे गले में जैसे पिता मोर लगे हुए काले तो है किंतु जगत तुम्हारा उजाला कर रहा इतना सुंदर और तुम्हारे शरीर से इतने सुगंध भी आ रहे कहाँ से आए वो बोले देखो मैं रहता हूँ मानस सरोवर से मैं आ रहा हूँ तो वो गोबर के रहने वाले किला कहने लगे मानस सरोवर क्या है तो मानस सरोवर के बारे में सुंदर रूप में वर्णन करने लगे देखो मानस सरोवर ऐसे है जहाँ पर ऐसे सुंदर सुंदर कमल उस पहाड़ी खिले हुए हैं जिसके जल इतना सुंदर स्वच्छ निर्मल है क्रिस्टल वाटर है आप एक पैर के छोड़े नीचे बटन तक दिखाई पड़ेगा इतना सुंदर अनेक प्रकार के जलोदर पक्षी के द्वारा वो फलोरत हुआ है और उस सरोवर के चारों तरफ सुंदर वृक्ष पुष्प आदि लता आदि कोयल कूदते हैं मयूर नृत्य आदि करते रहते हैं
पहले हम लोग
शिवरात्रि के व्रत किया। महाशिवरात्रि एक राजकुमारी लेके आती और वो भी अपने व्रत व्रत करती सिद्धि की और उन्होंने सिद्धि के लिए प्रार्थना में थी आज आपके चरण में 108 कमल उपहार दे। और वही राजकुमारी सर्वत्र घूमते घूमते उसी सरोवर से और 108 में उसी जो बड़ा कमल को उन्होंने जानकर और रात भोर एक एक मंत्र के द्वारा नमः शिवाय करके एक एक मंत्र के द्वारा शिव जी के चरण में उपहार देने लगी। और जिस वह कीड़ा जिस कमल में था उसी कमल के द्वारा शिव जी के सिर पर डाल दिया। देखो कहां था वो गोबर के कीड़ा दुर्गंधम है वह गोबर में आज कहां कमल के अंदर और कमल के अंदर भी फेर चलेगी कहा शिव जी के मस्तक पर। फिर प्रभात होने के साथ साथ ही साथ राजकुमारी समस्त कमल के अचल पर जीवसी था जो कमल जो है उसको उठा करके गंगा में बहा दिया। और फिर सुचंदित होने के साथ ही साथ वो कमल की कुंकड़ी अपने आप खिल गए और वो गोबर के कीड़ा कमल से निकल करके गंगा जल पान करने के साथ ही साथ अपने ये शरीर को छोड़ दिया और सुंदर अवरूप सिद्ध देह प्राप्त करके देखो वृंदावन में चले और वृंदावन बिहारी लाल। इस कथा की तात्पर्य यह है इस संसार में जीव जो विषय पीड़ा में गोबर गोबर के रहने वाले पीड़ा के भांति दुर्गंधमय इस संसार में हम लोग रह रहे हैं किंतु साधु संघ में अथवा भ्रमण रूपी साधु संघ के द्वारा देखो कहा कमल यानी भगवान के चरण कमल की मकरंद पान और फिर शिव जी रूपी गुरु गुरु के संत प्राप्त हो जाते हैं और गुरु से गंगा जल रूपी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके और शुद्ध भक्ति रूपी गंगा जल को पान करते ही इस शरीर को छोड़ देते हैं और नित्य सिद्ध स्वरूप में गुरु वृंदावन में चले जाते हैं। यही साधु संघ की वही हमारे आचार्य पास वर्णन करते हैं। इसलिए आज हम लोग गुरुपाद के चरण कमल में इसलिए आए हैं गुरुपाद की बात करें विषय की किराई किराई है विषय विषय किस निष्ठा के पीड़ा हम लोग संसार में पड़े हैं गुरुपाद को मुक्ति पद के छोटी पकड़ करके अपने चरण कमल में स्थान दिए हैं। इसलिए मेरे गुरुपाद पद में ऐसे कहते थे मैं पूर्व आचार्य की नहीं जानता हूँ यहाँ तक कि मुझे राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की कृपा में ही जानता हूँ मैं जानता हूँ एकमात्र मेरे गुरुपाद पद में क्यों गुरुपाद पद की बात करके मेरे छोटी पकड़ करके अपने चरण कमल में स्थान दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है जिनके दयालुता की कथा जिनकी महिमा सत्र वर्णन करते हैं किंतु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तो युग युग में भी आए हैं ब्रह्मा के एक दिन ही भी आए थे किंतु उस समय तो वे संसार में था किंतु उनकी जो अचिंत शक्ति है उन्होंने कृपा करके मेरे कृपा करके मुझे अपने चरण में स्थान नहीं दिया किंतु मेरे गुरु पाद पद्मों क्या थी मेरे चोटी के पकड़ करके अपने भीषण करके जानना लेना नहीं चाहता हूँ तथा भी गुरुपाद पद क्या करते हैं जबरदस्ती करके अपने चरण कमल की मकरंद यानी मधु के जय जबरदस्ती पान कराते हैं। इसलिए हमारे गुणावदास गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद की चरण कमल की वर्णना वर्णन वंदना करते हैं वैराग जो भक्ति रसम प्रयत्न अपाय मम अभिस्वंदम कृपां उदीर्य वरद दुखी सनातन स्तम प्रभु माश्रयामि। इसी के हमारे आचार्य जो की आप वैष्णव लोग भी वर्णन करते हैं वैराग जो भक्ति रसम प्रयत्न अपाय मम अभिस्वंदम कृपां उदीर्य वरद दुखी तम नारायण चरणाश्रम
You'll have to translate in English.
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम फैलाए कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्य गौर गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय तवैवास्मि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मय माम शरणं अभी अभी आप लोगों ने श्रीमान भक्ति वेदांत बन महाराज जी के मुख से सत्संग की महिमा सुनी। उन्होंने शास्त्रों से बहुत से प्रमाणों को उल्लेख करके बतलाया साधु संग के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। साधु संग साधु संग साधु संग लौ मात्र सर्व सिद्धि। साधु संग से एक क्षण में भी बस भगवान के चरणों में भक्ति हो जाती है, उसका जीवन का काया पलट हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु के परिकर श्री हरिदास ठाकुर जी बैनापुर के जंगलों में एकांत जगह में निर्जन जगह में तुलसी का एक पौधा लगा दिया था और वहां पर गुफा बनाकर उसमें भजन करते थे। बड़े बड़े दूर के निकट के लोग आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते थे, बड़ा आदर करते थे। उस देश का जमींदार रामचंद्र खान, देखा जी ये सब मेरी प्रजाएं हैं, ये हमारा आदर नहीं करते। और एक मुसलमान और मुसलमान के चरणों में प्रणाम दंडोत प्रणाम करता है, चरणों की धूली लेते हैं, उसको ईर्ष्या हो गई और उसने अपने यहाँ की नुआज्योति वेश्याओं से कहा क्या इसका पतन करा सकती हो? न, कहा ये तो चुटकी बजाने का खेल है, बस एक ही रात में हम जाएंगे, उसका यह सब ब्रह्मचारी धर्म इत्यादि सभी नष्ट कर देंगे, आधा राज्य तुमको दे देंगे। उसने कहा जी ठीक है आज मैं जाती हूं, तो अपने मेरा प्यादा भी तुम्हारे साथ में जाएगा जो रंगे हाथ पकड़ लेगा। अभी ठहर लीजिए, मैं उससे बातचीत करके जब ठीक कर लूंगी तब उसको मैं बुलाऊंगी। ठीक, हरिदास ठाकुर जी रात में भजन कर रहे, 8-9 बजे के रात के करीब में वो पहुंची आधी नंगी दशा में और हरिदास जी के भजन की गुफा के पास ही आकर के दंडवत प्रणाम किया और बोली कि हरिदास ठाकुर जी आप परम नौजवान और बड़े सुंदर हैं, मैंने अपना हृदय आपको चरणों में दे दिया है, इस दासी की इच्छा पूर्ण करें। और तरह तरह की अंग भंगी करने लगी। हरिदास ठाकुर जी ने कहा देखो मैं एक कोटि हरि नाम का संकल्प लिया है, अब वो पूरा ही होने वाला है, तुम बैठ करके प्रतीक्षा करो, हमारी जब हो जाएगी हरि नाम संख्या तो तुम्हारी मनस्कामना हम पूर्ण कर दें। वो इसी प्रतीक्षा में बैठी रही, करते 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 सवेरा हो गया, मन महसूस करके रह गई। हरिदास ठाकुर ने ये कहा, तुम कोई फिकर मत करो, अभी हमारा हरिनाम पूरा नहीं हुआ, फिर आना था। दूसरे दिन फिर आई, रात भर हरिनाम करते रहे, जगते रहे, और उनके मुख से शुद्ध नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सुनती रही। दूसरे दिन भी लौट करके चली गई, तीसरे दिन आई, तीसरे दिन आकर के हरिनाम सुनते सुनते जब रात समाप्त होने को आई तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, तो जिसे आप क्षमा करें, रामचंद्र जी जमींदार ने मुझे लोभ लालच पैसे का देकर आपको पतित करने के लिए हमारे पास में भेजा, किंतु मैं नहीं कर सकी, हमारा हृदय निर्मल हो गया आपके संग से, अब मैं क्या करूं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा, जी देखो मैं जानता था पहले ही, किंतु तुम्हारे लिए यहां पर आ गया, अब तुम पूर्ण रूप से निर्मल हो चुकी है, घर में जाओ, जो कुछ वेश्यावृत्ति से कमाया है ब्राह्मणों को दान दो, वो दान तुम्हारा ले लेंगे, क्योंकि धन के लोलुप है, और एक वस्त्र बंद करके हमारी कुटी में आ जाओ। चली गई और ब्राह्मणों को सब दान दे करके और एक वस्त्र पहन करके, बस सादा सफेद कपड़ा आ गई। हरिदास ठाकुर जी ने उसको हरि नाम दिया, हरे कृष्ण, और बोली तुम्हारे पास में किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा, बड़े बड़े साधु संत लोग भी तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे, तुम्हारे भोजन के लिए प्रचुर चीज लाएंगे, बहुत कुछ ले आएंगे, उसमें से तुम्हारा गुजर जितना हो जाए उतना ही लेना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, वंदना देना, जल देना और हरि नाम करना, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए, कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए। हरिदास ठाकुर जी चले, देखो ऐसे एक निर्घिन्न वेश्या भी साधु संग के प्रभाव से कैसे बन गए, सही से वेश्या है परम महान्ति, बड़े बड़े दर्शन के जाए, बड़े दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आने लगे, और भेंट के समय जैसे हमारे पास में लोग तरह तरह की मिठाई भोजन क्या क्या लाते हैं, केले अंगूर क्या क्या, उसके पास भी आने लगे, और उसमें से वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ निर्वाह करती और बाकी सब कुछ लौटा देती, और वहां तुलसी की परिक्रमा करती, तुलसी की पानी देती, और वो बड़ी महंत हो गई। ये साधु संघ का फल। आप लोग जानते हैं नारद जी को, एक समय एक बहेलिया जंगल में सुअरों को, बाघों को, भालू को और सब बनेले जंतुओं को मारता था, किंतु प्राण से नहीं मारता था, छटपट करते हुए छोड़ देता था। एक दिन बाय चांस नारद ऋषि उसी रास्ते से निकले, नारद ऋषि को देख करके और सब जो जानवर थे भाग गए, बहेलिया निकट आया और क्रोध पूर्वक कहने लगा, तुम इधर क्यों आया,
मरने को रास्ता नहीं मिला,
मेरे जितने थे पशु लोग सब भाग गए, इनको मार नहीं सका। वो तो बात ठीक है, तो बतलाओ तुम इन पशुओं को मारता है, छटपट छटपट करते हैं और तुम प्राण से नहीं मारता, इसका कारण क्या है? ये हमारे वंश की रीति है, हमारे पिताजी और हमारे जानवरों को छटपते हुए देख करके मुझे बड़ा आनंद होता है। अच्छी बात है। उसके सिर पर हाथ रख दिया, देखा क्या जितने जानवरों को मारा है सब उसे वैसे ही मार रहे हैं, छटपट छटपट करता है, मरता नहीं है। देख करके भयभीत हो गया, उनके चरणों में गिर गया, बोला जे हमारा उद्धार कैसे होगा, पहले अपना धनुष बाण तो पड़ करके फेंक दो तो मेरा जीविका निर्वाह कैसे होगा, मत चिंता करो, प्रचुर रूप में तुम्हारे पास में भोजन की चीजें आ जाएंगी। नारद जी ने उसको मंत्र दिया हरे कृष्ण का, और वो चले गए। कुछ दिनों के बाद में अंगिरा ऋषि के साथ में आए लौट कर, देखा क्या वो जो बहेलिया था नारद जी को देखते ही प्रणाम किया साष्टांग, किंतु ऐसे नहीं, अपनी चादर से रास्ते को जहां पर चीटियां रेंग रही थी और जानवर छोटे छोटे उनको हटाया और तब प्रणाम। जब निकट आया तो नारद जी ने कहा ये बहेलिया था, प्राणियों को मारता था, आज ये एक कीड़ा न मर जाए, चींटी न मर जाए, इसके लिए रास्ता साफ करके और हम लोगों को प्रणाम कर रहा है। तो कहे आप चिंतामणि हैं, आप जिसको स्पर्श कर देंगे उसकी ऐसी, ये साधु संघ की महिमा है। और देखो साधु संघ की महिमा, हनुमान जी सीता का पता लगाने के लिए समुद्र को लांग करके गए और मच्छर जैसा छोटा सा रूप बना करके चारों तरफ में घूम रहे हैं। उन्होंने रावण की हवेली में चारों तरफ में खोजा, रावण मदिरा पान करके मूर्छित होकर के पड़ा हुआ, उनकी स्त्रियां भी ऐसी पड़ी हुई हैं, सबको देखा सीता जी को नहीं। तो थोड़ी देर में इधर उधर ढूंढ रहे थे, एक आवाज आई राम राम, नीचे उतर गए कि कहां पर वो कौन थे, हनुमान जी से उनकी भेंट हुई क्षण मात्र, और वो कैसे उच्च कोटि के राम के भक्त हो गए, ये साधु संघ की महिमा है। और भी कितने हैं, सनक सनंदन सनातन वे ब्रह्मवादी ऋषि हैं। ब्रह्मवादी मैंने क्या, कृष्ण को देख करके कह रही ये ब्रह्म है, उनके प्रति उनकी निष्ठा नहीं होगी, उनको उनकी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे, किंतु पिता ब्रह्मा जी की कृपा से भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी का गंध उनके नाकों में दिया। जब वहां गए नारायण का साक्षात दर्शन किया, एकदम बदल करके पूरे भक्त हो गए। हमारे सुखदेव गोस्वामी जी वो भी ब्रह्मवादी थे। जब लेते ही घर से निकल गए, माता के गर्भ से निकलते ही जंगल में चले गए। व्यास जी ने कहा, हमने भागवत तो बनाई, इसका वक्ता तो कोई है नहीं जो हमारे बाद में प्रचार कर सके, और ये जन्म जाति बैरागी है, इसको किसी प्रकार से घुमा करके लाया जाए। उस दिन तो वो हा पुत्र करते हुए पीछे से दौड़े, और प्रतिध्वनि आई, कौन किसका पुत्र। और उस समय में वो तो चले गए, किंतु पीछे से कि
बैलिया से
क्या कर रहा था,
उसकी तो वापिस आए बाद में बैलिया के द्वारा श्लोक,
और उसके संबंध में कह रहा था
सुखदेव को सभी दर्शन जी।
सुखदेव नारद जी, व्यास जी ने एक भागवत का पद्य लिखा कृष्ण के सौंदर्य के संबंध में। सुखदेव जी जंगल में थे, सुनकर के आकृष्ट हो गए, और उन्होंने पूछा, ये जाओ जिसका जिसे सुना है उसे पूछो ये उसके गुण क्या है। अहो बकीयम तन काल कूटम घर से आ लेभे गति, देखो पुतना उनको मारने के लिए दूध स्तन में कुआलकूट विष लगा करके आई, और उसको धात्री उचित गति दे दी। बस सुन करके ही बस झट व्यास जी के चरणों में उपस्थित हो गए और सारी भागवत का अध्ययन किया, और फिर वही चारों तरफ में भागवत का प्रचार किया। व्यास जी के संग से ही ब्रह्मवादी से एकांतिक, यहां तक कि कैसी भक्ति, उनकी इष्ट देवी राधिका थी, जिनका नाम लेने से ही मूर्छित हो जाते थे, कितने
6 महीने
की मूर्छा जाती, इसलिए उनका नाम कहीं भागवत में लिखा नहीं, दूसरे रूप में परोक्ष रूप में लिखा है। ये सब साधु संघ की प्रचुर महिमाएं हैं। इसलिए साधु संघ किंतु कहते हैं किसको, समझो, साधु का संग रसोई बना देने से, पैर दबाने से ही नहीं हो जाएगा, संग में रहने से नहीं होगा, ददाती प्रतिग्रहणाती भूमते भोजते ददाती प्रतिग्रहणाती
गुह्यम आख्याति
गुह्यम आख्याति पृच्छति
ते भोजते चैव समविधौ प्रतिलक्षणम्।
साधु के संग में, गुरु के संग में रह करके उनकी सेवा तो करते हैं, वो तो ठीक है, किंतु उतने से ही काम नहीं बनेगा, अपनी प्रिय वस्तु साधु को देना, और वो कृपा करके जो कुछ देते हैं उसको ग्रहण करना। भगवान के संबंध में, भक्ति के संबंध में, ये गुह्य विषयों को गुरु से वैष्णव से पूछना साधुओं से, और उनसे प्रश्न करना पूछना, पृच्छति भूमते भोजते चैव, और उनके अनुकूल उनको प्रसाद देना, और उनका अवशिष्ट महा महा प्रसाद ग्रहण करना। ये करने से साधु संघ होता है। साधु संघ में रह करके भक्ति के संबंध में, प्रेम के संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं किया, नहीं पूछा, और फिर उसको फॉलो नहीं किया, उसका अनुगमन नहीं किया, पालन नहीं किया, तो हजारों जन्म तक साधु संग करने से नहीं होगा। इसलिए साधु संग करने का रूप गोस्वामी ने ये फॉर्मूला बना दिया, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम् आख्याति पृच्छते पुंक्ते भोजयते च। इस प्रकार से साधु संग आप लोग करें, उस पढ़ें और उसके विषय में उनसे प्रश्न करें। श्रीमद् भागवत चैतन्य चैतामृत इत्यादि जितने ग्रंथ हैं, परीक्षित महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर, नारद जी उत्तर दे रहे हैं, और कौन नारद और व्यास जी का ये चैतन्य चैतामृत में सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के साथ में महाप्रभु का, महाप्रभु और राय रामानंद का, ये सब पूछने के बिना नहीं हो सकता, इसलिए उनके संबंध में पूछना चाहिए। ये है साधु गौ प्रेमानंदे। अरे वो आया है, क्या नाम? हाँ आओ, आ जाओ। ट्रांसलेशन यू डू। अच्छा एक मिनट बैठ जाओ, हटा दो तुम मृदंग बजाना, यू शुड डू मृदंग। कौन है, कैसा है, ठीक है?
And now you've heard from Srimad Bhuvan Maharaj about the glories of Sadhu Sangha, how Sadhu Sangha, Srimad Bhuvan Maharaj took many quotations from different scriptures and very beautifully described the glories of Sadhu Sangha.
Mangalam Bhavatu.
And then we began to tell the story of Sri Haridas Thakur. Sri Haridas Thakur, he was alone in the jungles of Benamal in West Bengal. He had a tulsi plant there and he was chanting his rounds every day, doing his bhakti like that over there. The local king, or in charge of the area, Ramachandra Khan, became very envious because all people began to come to Haridas Thakur and accept, give pranams and give him many things, give him lots of respect. So he became envious. Why is everybody respecting him and not respecting me? So because of his envy, he went to a prostitute, called a prostitute, to try to defame Haridas Thakur. The prostitute said, he said, can you defame Haridas Thakur? The prostitute said, yes, of course, no problem. See me, many, many brahmacharis and yogis, they all fall down. This is like a little game. It's not even an issue for me to make Haridas Thakur fall down. She was very beautiful, the prostitute said.
अभी तो रहेंगे ना आप दो चार दिन,
कल जाऊंगा गुरु पूर्णिमा के समय आऊंगा, तो 6 महीने
began to sit there and said, hey Haridas Thakur, you're very beautiful, you're very young. He said, seeing this, I've become completely bewildered by you and I'm completely surrendering myself to you. Please satisfy the desire of this dasi or this of their servants. Haridas Thakur said, sure, no problem, I'll do that, but I have to finish chanting my rounds. I took a vow that I need to chant 3 lakhs Harinam every day. I've almost finished, so just sit here and I'll continue. So he was chanting, and hearing the Maha Mantra. Night went by, it was too late, she had to leave the next morning. She came back the same day. The next day, same story, I have to finish my rounds. She was listening to the Harinam. Then on the third day, Gurudev said, by hearing the Sudhanam, the pure chanting of the pure Vaishnava, she was completely changed. She went and did pranams to Haridas Thakur and said, please forgive me. Says, this king has sent me to make you fall down.
And
I'll agree for attaining money, for being paid a lot of money. Oh, the king, I didn't mention before. But the king said, I'll give you half my kingdom if you can make him fall down. And so she said, out of the greed of attaining money, I came to do this, but I made an offense. Please forgive me. Haridas Thakur said, I know. Then she said, well, what should I do now? He said, take all the money that you've earned from prostitution and give it to the Brahmins. He says, because the Brahmins are greedy for money, they'll accept that. They'll accept that bhiksha. He says, so, here, go get that. I come dressed in one white sari, very simply. I come and do bhajan here. And said, don't worry for your maintenance. Many, many people will come to do pranam.
So,
they'll give many fruits and
duty grant kar liya.
So don't worry.
Ah, duty grant kar liya.
So we come to my grandpa and say, I've given many, many
इंस्पेक्शन करने गया था मेरे को डिटेल दिया गया था यहाँ से चीफ इंजीनियर ने दिया था भगवान ने बहुत दिन तक आपको भुगाने के बाद में जीवन दान किया है
भगवान
का भजन
कर
थोड़ा सा अधिक भूल गया है कोई बात
नहीं है He said, well, this is our heritage. My father used to do it, my grandfather used to do it. This is our family tradition, so I kill them. And by seeing the animals, I'm very happy. I like seeing them suffering in this condition. Then Narad Rishi became very emotional. He took his hand and put it on the hunter's head. The hunter immediately saw that all the animals were coming and killing him and suffered a lot. And he said, oh my gosh, what am I doing? So he said, what should I do? Narad Rishi said, first break your bow. So he broke his bow, and then he said, well, if I break my bow, what will I eat? How can I survive? This is how I make my income. He says, don't worry, many people will come and give you nice things to eat. Many, many grapes, papayas, and good food. So don't worry. And then, so he did that. Then Narad Rishi returned some months later with Angira Rishi to visit his disciple Mugari. And he saw that Murugari was coming out, but instead of doing pranams, he was taking his chadar and wiping the floor. Narad Rishi told him, Angira Rishi, then look, he used to be a big hunter. He used to kill so many animals, half kill them. He used to like enjoy them.
Tumhara beta hai.
Enjoy them, enjoy seeing them suffer. And now he won't even harm an ant. So just see the power of Sadhu Sangha. Sadhu Sangha is so powerful, has the power to change even the most fallen. Fallen people. Gurudev said the sadhus are like chintamani or touchstone. Touchstone, whenever they touch iron, it turns into gold automatically. So whenever the sadhu comes in contact with anyone, no matter how fallen they are, they get completely changed and completely delivered by sadhu sangha. Gurudev told another story, interesting story. How Hanuman, when Ram left, Hanuman went to search for Sita. He made one jump all the way to Sri Lanka. And he was looking around for Sita Deva. He saw the king of Kamsa but still wasn't able to find Sita Devi.
Ravan.
So he came to see, he saw the wives of Ravan. And then he saw someone chanting Ram Ram, and this was Vibhishan. So Hanuman came there, and by the association of Hanuman, Vibhishan became such a great big Ram Bhakta. So this is, did I say it right, Maharaj? Yeah, so this is the power of Sadhu Sangha. Another story Srila Gurudev said is about the four Kumaras. They were Brahma bodies.
At
the conception of God, so by the mercy of their father, Brahma, they were able to smell the tulasi from the feet of Krishna. And this attracted them. And by this Sadhu Sangha also, they were changed and were able to take the very darshan of this great personality of Godhead. And when he was born, he died immediately. Vyasadeva was concerned. I wrote the Srimad Bhagavatam. I need someone to spread this. And he saw that Vyasadeva, from his very childhood, he's been detached from the material world. So he decided, how can he attract him? What he did was he chanted two slokas from the Srimad Bhagavatam that were very beautiful, that Vyasadeva wrote. One was Varhapidam Natarbhu Vapukarnyo Karnikaram, and the other one
was a homework he himself called Bhutan, explaining about the beauty of Krishna. But Gurudev explained about how Putana, she came, she put Kalakut Beej, or a very powerful poison, on her breast to come and kill Krishna. But instead of Krishna killing her, well, he killed her, but instead of sending her to hell, he gave her the high position of being a mother. So by this association, also Sukadeva Goswami was changed and became a great Vaishnava by the association of Vyasadeva. So Gurudev kept on saying, to just see the power of Sadhu Sangha. He said that the Ishtadeva of Srila Vyasadeva, Srimati Radhika, and even by chanting the names of, he wasn't able to say the name of Srimati Radhika without falling unconscious. So this Sadhu Sangha is very powerful. And then Srila Gurudev said, one thing was interesting. He said that even by coming in association, just massaging the sadhus and cooking for them, Gurudev said, this is not enough. Just massaging them and coming and being nearby. He says, you have to perform sadhu sangha as described by Srila Rupa Goswami in Upadesha Amrita Dadhati Prati Gainati Bhuya Makiti Pritchati. He said, whatever is dear to you, whatever is your Priya Vastu, whatever is dear to you, you give this to the Vaishnavas. And whatever they give to you, you humbly accept this. He said, what's on your mind, you come and you question about Hari Katha and hear the Katha from the Vaishnavas. Also, you give them what's, I like it if he said, anukul, what's favorable for the Vaishnava to eat. Something that's good for him, give him something to eat. And accept their Maha Maha Prashad, or the remnants coming for the Vaishnavas. This is how to perform Sadhu Sangha. Srila Gurudev said this is like a formula given how to perform Sadhu Sangha by Srila Rupa Goswami. He said, if you come and stay many years in association of Vaishnavas, but never ask about bhakti, never ask about spiritual things, then he said, this surprised me. He said, even thousands of years, you won't get delivered. He explained how the Srimad Bhagavatam is question and answer. How Sri Sanatan Shiksha and Chaitanya Charitamrita, Sanatan Goswami is asking questions. So coming into the association of Vaishnavas, you need to ask questions and hear the Harikatha from them, then Sadhu Sangha will have a support. And Mahaprabhu is also question and answer.
Are kya dhyan mein kar raha, utho.